मुश्किल अल्फाज की वजाहत। तबारका बारा काफ, और बारा काफ के मानी क्या है? ऊंट का सीना। और इसी तरह ऊंट का अगर सीना है तो ऊंट अगर कहीं बैठ जाता, जम जाता, बैठ जाता तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। तो उसी से बरकत का लफ्ज जो है, फरावानी, ज्याति, खैर और इजहारे कमाल, उसके लिए बोला जाता है। मसलन तबारक तू अलैकुम। एक दफा एक बद्दू एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया और अपने साथियों से कहने लगा, तबारक तू अलैकुम, मैं तुमसे ऊंचा हो गया हूं। मतलब बुलंदी के लिए भी ना। इसी तरह अगर किसी की अजमत किसी से ज्यादा हो जाए, बुजुर्गी बढ़ जाए, तो तब भी ये लफ्ज तबारुक का आता है। और कभी पाकीजगी में कमाल हो उसके लिए भी आता है। खैर और भलाई में कोई बढ़ जाए तो उसके लिए भी आता है। तो असल में कहते हैं कि इसके दो मصدر हैं, एक है बरका और दूसरा है बुरूक। बरका और बुरूक इसके दो मصدر हैं। और अगर बरका से हो तो इसके मानी है कसरत, ज्यादती का तसव्वुर। और अगर बुरूक से हो तो इसके मानी है कि जैसे किसी चीज में बका पाई जाए, सबात पाया जाए, व लाजमी पाई जाए ना उस वो चीज। तो बहरहाल ये यहाँ पे बाबे तफाउल की खसूसियात में फिर मुबालगा और इजहारे कमाल दोनों इसमें शामिल हो जाती हैं। मैंने आपको पहले भी एक दफा बताया था कि एक चीज होती है मजदर और एक चीज होती है फेल। तो मजदर और फेल का फर्क क्या है ना? अब आप देखें कि फेल जो है, फेल किसे कहते हैं? काम के लिए आता है ना, कि जब कोई काम कर रही होती है तो फेल के अंदर जमाना भी पाया जाता है कि किसी काम का करना, होना, सहना जो है वो जमाने के लिहाज से पाया जाए, वो तो होता है फेल। और मजदर जो होता है ना, इसमें सिर्फ काम का नाम होता है, उसमें फेल नहीं होता। मजदर क्या होता है कि फेल के नाम को मजदर कहते हैं। नंबर वन, फेल के नाम को मजदर कहते हैं। नंबर दो, मजदर में जमाना नहीं पाया जाता। नंबर तीन, मजदर इस्म होता है। मजदर इस्म होता है इसलिए तनवीन या यानी इसम मजदर जो होता है, तनवीन या अलिफ लाम के साथ जो है ये आ सकता है। और उर्दू में इसके तर्जमे के आखिर में अमूमन नून अलिफ ना आता है। मसलन अब इस्तिग़फारुन, इस्तिग़फारुन बख्शिश तलब करना, ना नून अलिफ ना पहचान है। तालीमुन सिखाना, ये मजदर है, तालीम मजदर है। और इस्तिग़फारुन ये मजदर है। तो अच्छा, अब इस्तिग़फारुन तो मजदर है, तो फेल क्या है? इस्तग़फरा, इस्तग़फरा ये फेल है। उसने बख्शिश तलब की है ना, यस्तग़फिरु वो बख्शिश तलब करता है या करेगा, ये फेल मजारे है। लेकिन इस्तिग़फारुन क्या है? मजदर है। इसी तरह जो है वो अनजला, ये फेल है, उसने नाजिल किया। युनजिलु वो नाजिल करता है, लेकिन इनजालुन नाजिल करना है ना, नून अलिफ ना पहचान भी, तो ये मजदर है। अच्छा, बाज मजदर ऐसे होते हैं जो मीम से शुरू होते हैं, इनको मजदर मीमी कहते हैं। मसलन मसीरुन, मफाजतुन, मजदर मीमी। अच्छा, क्योंकि मजदरे मीमी और इसम जर्फ एक ही वजन पर होते हैं, ये बाज औकात जो हैं ये मतलब मिक्स से लगते हैं, तो सियाको सबाक से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मशरबुन पीना, ये मजदर भी है और मशरबुन पीने की जगह जर्फे मकाम भी है। इसी तरह मसीरुन लौटना, ये मजदर भी है और लौटने की जगह ये जर्फे मकाम भी है। तो आप फिर पूरे उस आयतों को या उस कलाम को जब पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा यहाँ पे ये मसीर लफ मजदर के मानी में है या फिर जरफे मकान के मानी में है। तो अहम बात क्या है कि आपको जो है वो ये बात समझ में आए कि फेल में और मजदर में क्या फर्क है। तो फिर आप एक दफा सुन लें कि मजदर सिर्फ काम का नाम है जबकि फेल काम होने के साथ साथ जमाने को जाहिर करता है। इस्तग़फ़रा उसने बख्शिश तलब की, यस्तग़फ़िरु वो बख्शिश तलब करता है या करेगा, ये दोनों फेल हैं यानी इस्तग़फ़रा भी और यस्तग़फ़िरु भी। लेकिन इस्तिग़फ़ारुन क्या है, ये मस्दर है। बस इसी मिसाल से आप याद रखें। तो मैं आपको बताती हूँ असल में तबारा का, और तबारा का रूट क्या है, बारा काफ, ये इसका मादा है। इससे दो मस्दर निकलते हैं, एक मस्दर है बारा काफ और ता सा जो जुड़ी हुई आती है ना, बराकत बराकतुन, और दूसरा है बुरूक, दो मस्दर है। तो बहरहाल मैंने एक दफा पहले बताया था, मैंने कहा शायद इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके बात समझ में आए और आगे चले। तो दूसरा अहम लफ्ज है मुल्क। मुल्क जो है इसका रूट क्या है, मीम लाम काफ, मुल्क और मानी क्या है इसके, बादशाही, यानी मलकियत के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल होता है और इसके साथ ही बादशाही, इक्तदारे आला और फरमा रवाई का इख्तियार किसी के पास होना, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आयत नंबर 4 है, 4, और इसमें लफ्ज है वआनहू, इसका रूट क्या है, आनहू, आयन व नून, और इसके मानी क्या है, मदद करना है ना, मुआविन भी इसी से है, ताउन भी इसी से है। हाँ, इया का नस्ताइनु, नस्ताइनु भी इससे है, शाबाश। नस्ताइनु का रूट क्या है, आयन व नून। आयत नंबर 4 में लफ्ज है वजूरा, जूर, जा वो रा, इसका रूट है, मानी किसी को याद है कि नहीं, झूठ तो आप ठीक कहती हैं और आप ये भी ठीक कहेंगी कि हाँ कभी लिखा था। हाँ, तो असल में जा वो रा जो है ये जो सीना होता है ना, सीने के ऊपर की जो कजी होती है, टेढ़ होती है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीने के ऊपर के हिस्से की खमीदगी, खम जो होता है उसके अंदर। और अब आप देखेंगे ज़ियारत करना, ज़ियारत भी इसी से है, ज़ूर से। ज़ूर यहाँ पे झूठ के लिए, दूसरी तरफ ज़ियारत मुलाकात के लिए आता है ना, कि मैंने उसकी ज़ियारत की। तो ज़ियारत में क्या होता है कि दो लोग होते हैं या कुछ लोग होते हैं, आपस में एक दूसरे की तरफ झुकते हैं है ना, सीना आगे आप करते हैं, बात करते हैं, मुलाकात करते हैं, ज़ियारत करना। तो ज़ियारत के मानी में भी आता है, झूठ के मानी में भी। तो जिस तरह सीना जो है वो झुक जाता है, इसी तरह जो झूठ होता है ना, सीधी राह से हटकर आप दूसरे रास्ते की तरफ जब जाते हैं तो झूठ बोलते हैं, सीधे रास्ते को छोड़कर आप एक तरफ को हो गए, समझ आई, सीधे रास्ते को छोड़कर आप एक तरफ को हो गए, गोया कि आपके सीना जो था उसके अंदर एक खम पैदा हो गया, तो जूरा। फिर इसके बाद लफ्ज है तुमला, तुमला, इसका रूट जो है वो क्या है, हाँ इसका रूट है तुमला का, कहते हैं कि मीम लाम और या, ये भी है इमला करवाना पढ़ना, और ये मुद्दत के लिए भी आता है मलियन, और इसके अलावा मोहलत देने के लिए भी आता है। ठीक है, बास कहते हैं कि इसका रूट है मीम लाम लाम, मलियन मुद्दत, यानी मीम लाम लाम जो है ना मिल्लत दीन के लिए भी आता है ना जैसे, लेकिन इसी तरह अमल्ला लिखवाने के लिए भी आता है। तो बहरहाल इमला करवाना तो आपको जो है वो अच्छी तरह सबको ये याद ही है कि इमला का लफ्ज बड़ा आम है। फिर इसके बाद जो है दूसरा आम लफ्ज है और वो है बुकरतं असीला। हाँ, बा काफ रा, और असीला का रूट क्या है? हमजा स्वाद लाम। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बुकरा किसे कहते हैं और असील किसे कहते हैं? हाँ सही। तो असल में जैसे दिन जो है ना, दिन दिन के लिए जो, वैसे तो दिन को आप 12 घंटों में आप तकसीम करते हैं, लेकिन जो है वो कुराने मजीद में बकसरत लफ्ज हमें मिलते हैं लैल और नहार के लिए, दिन और रात, सुबह शाम के लिए बहुत से लफ्ज मिलते हैं। और ये जो लफ्ज हमें मिलते हैं ये है 12। एक है अशरूक, है ना, अशरूक, तो इशराक। इसी तरह बुकूर है बुकरा। इसी तरह जो है वो गुदवा है गदू, फिर दोहा है, फिर हाजिरा, फिर जहीरा, फिर रवा, फिर असर, फिर कसर, फिर सईल, फिर अशी, और फिर है गुरूब का लफ्ज। तो हमें जो है वो ये लफ्ज जो है वो मुख्तलिफ लफ्ज मिलते हैं। तो यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है बकूर, और बकूर जो है इसके मानी क्या है? तो यहाँ पे जैसे बुक बुकरा तो असीला है, तो बा काफ रा जो है कमारा या कमारी को भी कहते हैं, है ना। तो बुकरा के मानी क्या है कि सुबह का वक्त, अबकार, सुबह सुबह का वक्त। जैसे अब क्या होता है कि सुबह सुबह आप और तो कोई काम नहीं कर रहे होते ना, बाकी दिन के हिस्सों में आप बहुत सा काम कर चुके होते हैं। तो इसी तरह कमारी जिससे अभी ताल्लुक कायम नहीं हुआ, वाह कोई काम नहीं हुआ, है ना। तो उस तरह बिक्र बाकिरा के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा जो है वो सुबह के लिए ये लफ्ज जो है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा जैसे जो है वो आम लफ्ज है और वो है असल का, और इसके मानी जो है वो क्या है कि अलिफ स्वाद लाम। तो इसको अगर आप अलिफ स्वाद लाम कहते हैं तो असल, तो मानी इसके क्या है? जड़। वैसे तो असल जो है वो जड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ ये लफ्ज आया है शाम के मानी में, शाम। और आप देखें कि यानी एक तरफ जो है ये शाम है और दूसरी तरफ ये लफ्ज जो है वो असल है यानी जड़ है, तो फिर इन दोनों में आप मुनासबत कैसे काम करेंगी, कायम करेंगी? तो असल में असील जो है ये असाल की जमा है, यानी असील जो है इसकी जमा असाल है, असील की जमा असाल है, असर के बाद का वक्त, और इसका ओपोजिट है बुकरा। जैसे कुरान में आता है वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतं असीला, है ना। तो इसके मानी फिर क्या है कि अगर लफ्ज बुकरा का आएगा, बेशक वो सुबह का वक्त है, लेकिन ये कि मुराद क्या होगा कि सुबह के लिए, मैंने कोई भी सुबह का वक्त है, बस सुबह के लिए बुकरा आ गया, असीला शाम के लिए आ जाएगा। हालांकि असीला जो है ये असर के बाद का वक्त है ना, क्योंकि कुरान में ये एक दूसरे के ओपोजिट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह आपने अभी सूरत नूर में ये लफ्ज पढ़ा है, जैसे कि इशा की नमाज का जब आपने वक्त पढ़ा है, मिन कबले सलातिल फजरी वहीना तदाउना सियाबकुम मिन जहीरती व मिन बाद सलातिल इशा, इशा इशा का लफ्ज पड़ा है ना। तो अब रात का अंधेरा छा जाने से लेकर आधी रात तक का ये वक्त है ना इशा। लेकिन कभी कभी ये शाम के लिए भी बोला जाता है ना। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशी वल इबकार। इबकार अगर सुबह के लिए आ गया तो फिर अशी जो है ये शाम के लिए लफ्ज आएगा। तो एक दूसरे के लिए ओपोजिट के इस्तेमाल होते हैं। बहरहाल तो बुकरतं असीला से मुराद है सुबह और शाम। अच्छा, इसके बाद लफ्ज है आयत नंबर 8 में, और ये लफ्ज है कंजुन। कंजुन किसे कहते हैं? हाँ, खजाने के लिए ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, और आपने खजाने के लिए और लफ्ज भी पढ़ा हुआ है। तो एक क्या है? किंतार है, शाबाश। तो और एक है, हाँ, एक है यही, जैसे कंजुन है खजाना, तो किंतार और कंज है, और तीसरा है खजाइन या खजन। तो किंतार क्या है? मालो दौलत की एक कसीर मिकदार। कंज क्या है? जो पोशीदा जमाशुदा माल, यानी ऐसा माल जो लोगों से छुपाया हुआ हो, खा वो दफन की शक्ल में हो या किसी भी जरिए से, यानी जिस माल को आपने सील कर दिया है, छुपा दिया है, जैसे आप पढ़ चुकी सूरत कहफ में, वामल जिदारू फकाना ले गोला मैनी यतीमैनी फिल मदीना थी वकाना ताहतहू कंजुल्लाहुमा। और तीसरा लफ्ज है, और वो है खजाइन, खजीना की जमा है, और इसके मानी है किसी जिंस या नकदी का स्टोर या जखीरा की हिफाजत का इंतजाम। कि जैसे जो कंज है वो छुपाया हुआ तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपने उसकी हिफाजत का कोई इंतजाम किया। जैसे दीवार के नीचे जो खजाना था, कोई पुलिसमैन तो नहीं खड़े हुए थे ना, लेकिन खजन जब आएगा तो जो स्टोर या नकदी या जो आपका पोशीदा या जाहिर जो भी माल है, तो खजन के अंदर दो चीजें जरूरी होती हैं, एक इकट्ठा, दूसरा उसकी हिफाजत का आपने इंतजाम किया हो। खाजिन मुहाफिज को भी कहते हैं। फिर इसके बाद है लफ्ज, ये आयत नंबर है 10, और उसमें लफ्ज है कसूरा। क्या रूट है इसका? जी, काफ स्वाद राफ। ये महल के लिए आस्था आता है, और मैंने आपको बताया था कसर के लिए कुरान ने दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, महल के लिए, महल के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, एक कसर का है, कसर के लिए नहीं, महल के लिए दो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, एक कसर है, दूसरा है सरहन। कसर कहते हैं आलीशान बुलंदोबाला इमारत को, और सरहन कहते हैं ऐसी इमारत जो नक्शो निगार से मुजयन हो और उसमें नकायस ना हो। आप ये भी आगे पढ़ेंगी जब वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया और वो बिल्कीस का वाकया पढ़ेंगे ना, तो जब बिल्कीस ने उसे देखा, फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जा, जब बिल्कीस ने उसे देखा तो क्या ख्याल किया? लुज्जा के मानी क्या है? अब गहरा पानी है, माशाल्लाह। देखा ना, ये हुई ना बात, वाकई सूरत नूर के क्विज में आप पास हो गई हैं सारे, आप सबने टॉप किया, आपने माशाल्लाह पूरे पूरे नंबर लिए, तो सही बात है कि लुज्जा के मानी गहरा पानी है। बिल्कीस ने उसे देखा तो ख्याल किया कि गहरा पानी है। वकशफत अनसाकैहा, वकशफत हटा दिया अपनी दोनों पिंडलियों से कपड़ा, काला इन्नहू, काला अब कौन बोल रहा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, क्योंकि काला है, कालत होता तो मलका सबा होती ना, तो अब काला सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नहु सरहुन, ये एक महल है, मुमर्रदुन मिन कवारीर, जिसमें जो है वो शीशे जड़े हुए हैं, ये मुमर्रदुन सजाया गया है कवारीर से, और कवारीर के माने क्या है? माशाल्लाह, क्या बात है आपकी, अब तो जरूरत नहीं आगे कुरान का तर्जमा करने की, है ना? तो जुजाजा भी शीशा पढ़ लिया और कवारीर भी पढ़ लिया आपने, तो ये है बात कि वहां पे सरहुन लफ्ज आया है, और ऐसी इमारत जो नक्शो निगार से मुजयन हो और नकायश से पाक हो। फिर इसके बाद जो है अगला लफ्ज है तगैयुज़ ज़फीरा। तगैयुज़ जो है गैस से है, और इसका रूट क्या है? हाँ, शाबाश, इसका रूट जो है ये गैन या और जोए है, और इसके मानी क्या है? गुस्से से भिपर उठना, गैज़ो गजब की कैफियत के अंदर होना, तो गैस गुस्सा होता है, और तगैयुज़ होता है कि आवाज तो है लेकिन ऐसी आवाज जब कोई बहुत ज्यादा जो है ना वो गुस्से में हो, तो तगैयुज़ का लफ्ज जो है वो गुस्से की आवाज के लिए जो है वो बोला जाता है। और आप देखें कि वैसे कुरान ने आवाज के लिए इस्तेमाल किए हैं 12-20 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कुरान ने आवाज के लिए। मैं आपको 20 नहीं पढ़ा रही, आप परेशान हो, आप ज्यादातर आप पढ़ चुकी हैं, लेकिन जो ये तगैयुज़ जो है ना, ये इसका दर्जा कौन सा हो सकता है? 16वां। 20 में से 16वां दर्जा, बस आप इतना याद कर लें कि गैज़ो गजब के जोश में जुंझलाहट और मजाजन उधार के मानी लेकर जहन्नुम की आग में जो तेजी है ना, और जोश की वजह से जो पैदा शुद आवाजें, मसलन आप जल्दी में होते हैं, तेजी में होते हैं, कोई चीज गिर गई, खुदा ना खास्ता देर हो गई, कोई मसला हो गया, उस वक्त यानी बड़े मुतहम्मिल मिजाज लोगों के अंदर भी कैसी आवाजें पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, तगय्युर जोर की आवाज। तो जहन्नुम की आग में तेजी और जोश की वजह से पैदा शुदा आवाजें, कहीं इमारत है या कोई किसी के गुस्से की आवाज, जैसे कुत्ता भौंकता है तो कैसी आवाज आती है। अच्छा, इसके बाद एक और लफ्ज आप यहाँ पे आप पढ़ी है, जफीरा जाफारा, ये 10वां दर्जा है, यानी गोया कि ये आवाज की जो किस्म है ये 10वें नंबर पे इसको रखा। जफीर किसे कहते हैं? लंबा सांस बाहर निकालना, गधे के रींगने की जो इब्तदाई आवाज जो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊंची हो जाती है, हाँ उसको जफीर कहते हैं। तो जफीरों व शहीक आपने पढ़ा है ना। तो बाज लोग क्या कहते हैं कि गधा जब रींगने को खत्म करे तो आखिर की आवाज जो ऊंची आवाज से पस्त होना शुरू होती है वो तो शहीक है, और जफीर क्या है? वो इब्तदाई आवाज है। बाज कहते हैं ये दोनों एक दूसरे के उलट है ना। तो बहरहाल जफीर लंबा सांस बाहर निकालना, गधे के रींगने की इब्तदाई आवाज फिर आहिस्ता आहिस्ता जो ऊंची होनी शुरू हो जाती है। तो एक है जफीर और एक है शहीक। तो जफीर गधे के रींगने की इब्तदा, शहीक है गधे के रींगने की इंतहा। तो यहाँ पे हैं दोनों तरह सही है, रींगना रींगना, हाँ यानी असल में जो है वो गधा जब बोलता है, रींगने से मुराद उसका यानी चलना नहीं है। हाँ बाज लोग इसको भी इस लफ्ज को भी इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी पंजाबी में कहते हैं कि हींकना, हींकता है, बोलता है तो उसकी आवाज जो आवाज निकालते हैं। अच्छा फिर इसके बाद है अहम लफ्ज और ये है दैयकन। इसका रूट क्या है? द्वाद या काफ, और इसके मानी है ये तंगी के लिए ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद है मुकर्रनीना, काफ रा नून कर्न से है, और कर्न इसका रूट है, और इसके मानी क्या है कर्न के? कर्न जो है दरअसल जो है वो मिले हुई चीज को कहते हैं, जैसे किसी चीज का इकट्ठा होना, और इसी तरह दोस्त और साथी के लिए भी कहा जाता है। क्यों? कि कोई चीज है जिसने उन दोनों को आपस में जो है वो मिला दिया है। इसी तरह जो ऊंट को जिस रस्सी से बांधा जाता है तो उसके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना। तो गोया के जैसे कर्ण जमाने को भी कहते हैं कि एक जमाने में मुख्तलिफ लोग पाए जाते हैं ना, तो जमाना यानी एक जमाने के जो लोग हैं उनके लिए भी ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो बहरहाल ये लफ्ज जो है ये बड़ा ही वसी माने में ये इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मुकर्रनीना, मुकर्रनीना के मानी क्या है? काफ रा नून, और यहाँ इसके मानी है कि दैयकन मुकर्रनीना। क्या मानी है? जकड़े हुए होंगे वो लोग जो हैं वो बांधे हुए होंगे, और वो लोग जो हैं वो उनके हाथ पांव जो हैं वो आपस में जो है ना वो बांधे हुए होंगे। तो असल में कर्ण वो रस्सी जिससे दो ऊंट बांधे जाएं, एक रस्सी ले ली उसे दो ऊंटों को बांधा, अब दोनों ऊंट क्या हो गए? साथी हो गए ना। इसी तरह अब कर्ण जमाने को कहते हैं, तो एक जमाने के जो लोग हैं, इसी तरह अलकर्ण जो है अगर कोई इल्म में एक जैसा है उसके लिए भी आता है कि इल्म में नजीर, जानदार बेजान दोनों चीजों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। करीन वो आदमी है जो दूसरे का हम उम्र है, बहादुरी में, कुव्वत में या दीगर औसाफ में। और बाज़ औक़ात ये लफ्ज करीन का लफ्ज बुरे मानी में भी इस्तेमाल किया जाता है, करीन। हाँ यानी अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि यहाँ तक कि जब हमारे पास आएगा तो कहेगा, ऐ काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू तो बड़ा बुरा साथी है। फबेसल करीन, बुरा साथी। तो करीन बाज़ औक़ात बुराई के मानी में भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। फिर है लफ्ज सबूरा, साबारा इसका रूट है और मानी इसके क्या है, हलाकत मौत के मानी में ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और फिर इसके बाद लफ्ज है बूरा, आयत 18 है, और बूरा बावोरा ये वाहिद जमा मुजक्कर मुअन्नस सबके लिए आता है। और ऐसी जमीन को भी कहते हैं जो नकारा हो, और यहाँ पे जो है वो ऐसी कौम के लिए इस्तेमाल किया गया है जो कि हलाक होने वाली है, ऐसी कौम जो के जो है वो शामत जदा है। हाँ, दारुल बवार यानी वो घर के लिए भी आता है, कौम के लिए भी आ गया, जमीन के लिए भी आता है। यानी असल में मानी आपने याद रखने हैं कि जो चीज फासिद है, नकारा है, जो शामत जदा है, उसके लिए ये लफ्ज है इस्तेमाल किया जाता है। और 18वें पारे की आखिरी आयत, और उसमें लफ्ज है फितनतन, फाता नून, फतन के मानी क्या होते हैं, हाँ आजमाइश तो मानी है ना, लेकिन सोने को पिघलाना, सोने को पिघलाना। तो जब सोने को पिघलाया जाता है तो नीचे क्या जलाया जाता है, आग ना, भट्टी में डाल दिया जाता है, आजमाइश शुरू हो गई है ना, ताकि उसका खरा खोटा अलग हो जाए। तो इसी तरह इंसान के लिए जो चीज, कोई फितना, कभी माल फितना, कभी औलाद फितना, कभी दोस्तियां फितना, कभी जॉब का मिलना फितना, कभी जॉब का छूटना फितना, कभी औलाद की महरूमी फितना, और कभी औलाद का अता करना अल्लाह की तरफ से फितना। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ फितने हैं। वकाना रब्बू का बसीरा, और तुम्हारा रब जो है वो सब कुछ देखता है। वैसे रूट वर्ड तो खत्म हो गए, लेकिन जो है वो पीछे सूरत नूर हमारी मुकम्मल हुई है, और हमारी एक दो बहनें अपने मजीद तासुरात जो है वो बताना चाह रही हैं उसके हवाले से। जी आप कहिए। बोल।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।
अब सही जवाब दिया, क्योंकि जान से जवाब देना चाहिए। हाँ जी बोलिए।
जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग पूरे नूर से भी गुजरे हैं, और कुरान की तमाम अपनी जगह पर उसकी एक खास अहमियत है, लेकिन सूरह नूर की दो तीन आयतें और उन्होंने खासा मुतासर किया। एक तो नूरुन अला नूर वाली जो आयत थी, उसको मैं कंप्यूटर पे जब स्लाइड पे देख रही थी तो उसमें काफ़ी डिफरेंट कारी हजरात ने जब उसको स्लाइड के साथ उसकी करत की थी, तो करत तो खैर अपनी जगह थी ही, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने जमीन आसमान और कायनात की जो जो भी चीज़ों की तस्वीर थी, तो वो एक जगह उन्होंने दरख्त और समंदर जो झाटे मारता हुआ समंदर दिखाया था, तो वाकई अल्लाह की कुदरत। और फिर मैं यही सोचती थी कि हमारी औकात क्या है, अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात के ये जो मौजिद मारता है वो पानी है, इसमें तो हम सेकंडों में कहीं के कहीं पहुंच जाए, लेकिन उस पर भी हमारा किबर और हमारा जो हमारी नाक है ना वो नहीं झुकती। और मतलब उस वक्त अपनी कमाईगी का एहसास हुआ कि अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत है, और वो चाहे तो मतलब मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। और पर्दे की आयतें भी बहुत अच्छी थी, और गो कि मैं पर्दा नहीं करती लेकिन बहरहाल दिल में बहुत है, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे तौफीक वाली बात तो खैर नहीं कहनी चाहिए, और बस मुझे इसको करने की मतलब सलाहियत दे दे, या जो भी कहें बहरहाल तौफीक तो नहीं कहना चाहिए,
ये
और
हालात साजगार कर दें।
हाँ बस हालात मेरे हक में साजगार कर दें इंशाल्लाह। बहरहाल दिल में तो बहुत है। और एक वो जो नमाज की आयतें थी, तो वो तो मुझे सूरह निसा में जब मैंने पढ़ी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अली को ये नसीहत की थी कि अव्वल वक्त में नमाज, तो मुझे उस चीज़ ने बहुत स्ट्राइक किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस चीज़ को अपनी लाइफ में ये हुआ कि मेरे पास अजान की जो क्लॉक है तो बस वो बजती है समटाइम्स, वो असल में मक्का की घड़ी है तो वो थोड़ा पहले दे देती है, लेकिन फिर मैं वो बस गिरते पड़ते वजू, तो बच्चे अक्सर कहते हैं कि अम्मा अभी टाइम नहीं हुआ, तो मैं कहती हूँ कि नहीं बेटा अजान हो गई तो हो गया टाइम, इसलिए कि अगर मैंने अभी नहीं पढ़ी तो फिर शैतान तो बहका देता है। तो हर आयतों में हमारे लिए उसूल है कि और ये जो घरों में दाखिले की बात है, तो जाहिर बात है पहले जो हमने जिंदगी गुजारी तो हमें इतने काम नहीं पता थे, लेकिन इतना पता चलता कि मैनर्स नहीं है। तो हमारी नेबर में एक फैमिली के अच्छे लोग थे, लेकिन उनका बेटा एक था, छोटा था, हालांकि वो मेरे छोटे भाई जैसा ही हकी था, उम्र में मुझसे मेरे पास 4-5 साल छोटा ही होगा, लेकिन जैसे बाज लोगों की उठान बहुत अच्छी होती है जैसे, तो अक्सर उसकी आदत थी ना कि वो बेधड़क घर में घुस के आ गया। और इवन कि एक दफा मैं सो रही थी तो मेरे कमरे में आके मेरे सिरहाने खड़ा हुआ है और मुझे नहीं पता कि ये कौन खड़ा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहरहाल पर्दा नहीं था, लेकिन इस तरह भी नहीं था, मतलब ये कि कोई इस तरह से मेरी जो आंख खुली तो मेरे सिरहाने खड़ा हुआ है। मैंने तो उस वक्त मैंने इसको इतना डांटा है कि मैंने कहा तुम्हें तमीज नहीं है किसी के घर में दाखिल होने की, हालांकि मुझे सूरह नूर का या इनायतों का नहीं पता था, लेकिन इतना सेंस था कि ये मैनर्स नहीं है कि किसी के घर में इस तरह था, वो भी मेरे बेडरूम में। मेरे बेडरूम में इवन मेरे वालिद नहीं आते थे मेरे सोने के औकात में, भाइयों का भी है और मेरे वालिद भी नहीं, इस तरह से गो के पर्दा नहीं था, लेकिन इतना पता था कि मैनर्स में शुमार है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को भी, और फिर मैंने इसमें पढ़ा कि छोटे बच्चों को भी इजाजत लेके आनी थी, कि मुझे ये नहीं मालूम था, मुझे था कि हाँ बड़ा आदमी जरूर अगर रात बात है तो नॉक करे कोई भी जरूरत है। लेकिन जैसे एक दफा हमारे घर में वो एडीटी का अलार्म लगा हुआ था और हम ऊपर सो रहे थे, हमारे गेस्ट आए हुए थे, हमने उन्हें नहीं बताया था कि एडीटी है, हमने कहा अभी अभी सो रहे हैं सुबह ही उठेंगे। वो बेचारे को ये हुआ कि वो हमारे बराबर में जो वॉशरूम था कमरे के बराबर में, तो उन्होंने हमें तंग करने के ख्याल से बेचारे ने मुनासिब नहीं समझा कि इसमें जाएं, क्योंकि इन घरों में आपको पता आवाज इतनी गूंजती है, वो बेचारे नीचे के बाथरूम में चले गए। अब हमारा तो नीचे अलार्म लगा हुआ था, तो जैसे ही उन्होंने अलार्म ने उनको सेंस किया तो वो अलार्म बजना शुरू हो गया। अब बीच रात है, हम भी नींद की गफलत में, वो एडीटी से कॉल आ गई। अब वो बेचारे हमारे दरवाजे पे थे भी बेचारे बड़े नेक फितरत इंसान, अब वो खड़े आवाज भी जोर से नहीं दे रहे कि हमारी नींद खराब हो, राशिद भाई राशिद भाई। खैर मेरे मियाँ फोन की आवाज से जो हड़बड़ा के उठे तो भागे वो, क्या हुआ, तो बाहर जाके देखा तो वो बेचारे एकदम खड़े कि मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन ये बच कैसे गया। तो फिर हमने उनसे बड़ी माजरा की कि नहीं हम ये समझे कि अब आप सो गए तो हम नीचे नहीं जाएंगे, कहें नहीं भाभी वो मुझे आपकी नींद का ख्याल हुआ, भाई और भाई तो मतलब एक सूरह नूर में बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और मैं ये समझती थी कि सिर्फ बड़ों को ही नॉक करना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों को मुझे नहीं पता था। अब बहरहाल अहकाम तो इसमें सारे ही बेहतरीन है, और हमें चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों को एजुकेट करें इन चीज़ों में। और लोग भी थोड़ा सा मतलब ख्याल करना चाहिए लोगों को भी आराम का, उसका अक्सर ये होता है वो मतलब मेरे हिसाब से मतलब लोगों को पता है कि मैं 10:30 बजे सो जाती हूँ, बात ये नहीं कि मैं सो जाती हूँ ये मेरी कोई अहमियत है, मेरी शख्सियत ऐसी है, बात ये कि मेरा स्केड्यूल ऐसा होता है कि मुझे फजर से पहले उठना होता है, और फिर उस वक्त से जो मैं उठी होती हूँ फिर मुझे बच्चों के हिफ्ज के सिलसिले में जो मैं उठी होती हूँ तो मतलब फिर मुझे लेटना नहीं मिलता। ये सारी बात सारी दुनिया को पता है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो 10:30 के बाद जो फोन करते हैं वो मेरे मियाँ भी जल्दी सो जाते हैं। मैं कहती हूँ कि लोगों को एटलीस्ट मतलब आपको पता है, एक बात एक है कि जिसको पता ही नहीं, अब वो उस वक्त फोन करके कहते हैं अच्छा आप सो गई थी, अच्छा सो जाएं, अब आपने तो उठा दिया, अब मैं कैसे सो जाऊं, अब आपने जब इतनी देर में फोन किया तो आप बोल भी नहीं जल्दी से। तो हमें छोटी छोटी बातों का ख्याल करना चाहिए कि मतलब किसी के घर वक्त बेवक्त और तकल्लुफात में नहीं पड़ना चाहिए कि मतलब हम कल आपके घर आएंगे, अब कल आपके घर आएंगे का मतलब है कि आज पूरा दिन है और कल का भी सुबह है, तो आप जरा इहतमाम कर लें। तो मेरा अपना उसूल ये है, पता नहीं इस बारे में अल्लाह और उसके रसूल का क्या हुक्म है, कि आपको अगर किसी से बहुत मिलने का दिल कर रहा है आप एक छोटी सी कॉल करके पूछ लें कि आप इस वक्त अवेलेबल हैं, अगर घर में हैं और सहूलत है और मैं आना चाह रही हूँ तो मैं आ सकती हूँ, बजाय इसके कि वो आपको मैंने 2 दिन पहले से बता दिया कि आप मेंटली प्रिपेयर हों कि जब तक 4 डिशेज ना सजाएं, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों के बहुत खिलाफ हूँ। मैं सोचती हूँ कि 4 डिश बनाने में जितना मैंने टाइम लगाया तो मेरी नमाज भी लेट हुई और मेरा 10 काम भी चले गए ना, तो उससे बेहतर है कि मैं एक ही सालन रख दूँ उसके आगे, लेकिन मेरी इबादत और मेरी चीज़ें ना ज़ाया हो जाए। लेकिन इन चीज़ों को हमें बहुत से दीनदार लोगों को मैंने देखा है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, दीन तो आ गया लेकिन अंदर उतरा नहीं, कि हम उनके घर गए तो देखो कि वो कुछ बस एक ही चीज़ रख दी। अरे भाई एक चीज़ रख दी, रखी तो सही, और अगर नहीं भी रखी तो मैं इस चीज़ को बुरा नहीं समझती, कि क्या पता उसके घर में उस वक्त कुछ ऐसा कुछ ना हो। तो ये छोटी छोटी बातें तो होती हैं, लेकिन हम दीन जो है नमाज रोजे को समझते हैं। और एक मेरी औरतों से रिक्वेस्ट है कि जो अबाए तो पहन लेती हैं लेकिन सफाई का ख्याल नहीं करती, अबाओं से इतनी महक आती है, आप उनसे गले मिल लें तो बड़ा अफसोस होता है कि आप लोग दीन को बदनाम कर रहे हो, यानी पैर की स्किन इतनी फटी हुई होगी कि आप लोग अगर बाहर निकलते हैं, हम बाहर निकलते हैं, अगर हमारे सर खुले हैं दैट्स इट, ओके हम क्रिश्चियन हैं, हम पे 10 तरह के लोग कहेंगे कि ये गैर मुस्लिम है, लेकिन अगर आपने स्कार्फ कर लिया है तो आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो आप कम से कम अपने सिंबल को जो है ना कोशिश करें कि उसका जो इमेज है उसको खराब ना करें, क्योंकि मुसलमानों का ऑलरेडी आप हम लोगों ने काफी नाम कमा लिया, मस्जिदों में कदर नहाएंगी नहीं या अबाए नहीं धोती हैं कि गले मिलो तो लगता है मुंह की सफाई का नहीं ख्याल करती, दांतों से इतनी बदबू कि दिल चाहता है ये दूर चली जाए। तो आप बताएं आपके मुंह से इतनी बदबू आएगी, फरिश्ते नहीं ठहरते, इंसान कहाँ ठहरेगा वहां पर। तो मुंह से सबकी बदबू आती है मगर हम प्रॉपर क्लीनिंग का ख्याल नहीं करते। कुछ नहीं, मुझे पता है बहुत से लोगों को पायरिया होता है, फिर आप लोगों को चाहिए कि नमक से अपने मुंह धोएं, या ठीक है डेंटिस्ट यहाँ पे बहुत महंगा है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, नमक से मुंह धोएं और मतलब सफाई का ख्याल रखें। ये मतलब हमारा आधा दिन तो यही खत्म हो जाता है, हम किसी से क्या बात करेंगे, क्या पर्दा करेंगे, या आप नमाज पढ़ें। हमने अगर गंदे हैं तो हमारी बदबू से ही आदमी भाग जाएगा। और हम एक हमारे एक मिलने वाले थे, वो इतनी लंबी उनकी दाढ़ी, मुझे दीन वालों से इसलिए शुरू में बड़ी चिढ़ होती थी जब तो मैंने कुरान नहीं पढ़ा था, कि मुझे ये बहुत ढकोसला लगता था। इतनी बड़ी उनकी दाढ़ी, बिल्कुल शरई हिसाब की दाढ़ी, और बड़ा सा उन्होंने जुब्बा भी पहन लिया, लेकिन वो किसी के लिविंग में बैठे थे और हम लिविंग के कोने पर टेबल पर खाना खा रहे थे। आप यकीन माने कि उनकी शेरवानी में जितनी बदबू थी ना, वो हम सब उसको महसूस कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई ऐसे दिन से अल्लाह बचाए, ऐसा दीनदार नहीं होना चाहिए। तो औरतों को भी स्पेशली चाहिए कि अपनी क्लीनिंग का ख्याल रखें। थोड़ा बहुत कमी बेशी हर में होती है, हर एक इंसान से बू तो आती है, लेकिन ये कि हमें ख्याल करना चाहिए। छोटी छोटी बातें, अब मोजे इतने महक रहे होंगे, मैं जाती थी एक जमाने में तरावी में, किसी मस्जिद में, नाम नहीं लूंगी मेरा, मेरे आगे जो साहिबा, अमूमन मेरे साथ ये होता था कि उनका मोजा इतना महक या इतनी गंदा कि मुझे उनके पास सजदा करना। अब आखिर में होता है ना कि आपको आखिर की जागने की रातों में तरावी में भी कसरत हो जाती है, तो वो सफ़ें कंजस्टेड करनी पड़ती हैं। तो अब मुझे जिधर सर रखना है, मुझे थोड़ा सा सफाई कर मतलब थोड़ा सा रहता है कि मतलब अब वो जिधर मुझे सजदा करना है तो मेरा तो खाक नमाज में दिल लगेगा, मुझे तो उनका मोजे पर सर रखना है। तो प्लीज औरतों से रिक्वेस्ट है कि जरा सा अपनी क्लीनिंग का ख्याल रखा करें, और जब कोई पास आएगा और उसको ठहरने का दिल चाहेगा तो वो आपकी बात सुनेगा। ये नहीं कहना।
जजाकिल्ला, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। और बहरहाल कभी इसलिए भी फोन करके पूछा जाता है कि आप अवेलेबल हैं और आपकी नीयत क्या है ना? तो हाँ, असल असल बात तो ये है। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता करें। हमारी और एक बहन है, वो अपने तासुरात जो हैं वो बताना चाह रही हैं।
अलैकुम। मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगी कि सूरह नूर तो मतलब हम जैसे तो पूरा कुरान ही जब से पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये कि अपने में तो बहुत ही ज्यादा कमी नजर आती है, मगर सूरह नूर का ये है कि इसमें तो जब पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा हम लोगों में कमी है। और ये कि वो जो आयत 35 हमने पढ़ी, अल्लाह नूर समावात, तो वो पढ़ के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि कायनात में हर तरफ अल्लाह का नूर ही नूर है। तो और उसके अलावा ये कहना चाहूंगी कि पर्दे का जो है उसके बारे में भी एक वाकया भी सुनाना चाहती हूँ मैं। जैसे मतलब मेरी शादी से थोड़े अरसे पहले ये वाकया मतलब पता चला था, तो कि एक मतलब जैसे मतलब जानने वाले थे, तो वो लड़की जैसे उसकी शादी हुई तो वो अपने माँ बाप के घर में ही रहती थी, हस्बैंड काम वाम नहीं करता था। तो उसके हस्बैंड का जैसे दोस्त था, तो वो जरा अच्छी जॉब पोस्ट पे भी था, और उनके साथ मतलब होटल वगैरह में जाना, और मतलब उसकी वाइफ को देखना खूब ज्वेलरी पहने हुए, और वो तो उसके साथ उसका रिलेशन हो गया जैसे, तो वो अपने हस्बैंड से, एक बच्चा भी था उनका, तो हस्बैंड से जो है मतलब पता नहीं क्या हुआ, जैसे कि रात में कहते हैं कि 2-3 बजे एकदम से हंगामा कर दिया घर में कि इसने मुझे तलाक दे दिया। और फिर मतलब जैसे वो फिर जाहिर है वो कोर्ट का जो कुछ होता है डिवोर्स का, वो सब मामला खत्म हो गया उनका। फिर उसके बाद ही कुछ अरसे के बाद पता चला कि वो जो हस्बैंड का दोस्त था उसके साथ उनका निकाह हो कर लिया, खुद ही वो भी घर वालों को बताया। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि बहुत जरूरी है पर्दे का तो बहुत ही ज्यादा, कि मतलब ऐसी बातें मतलब देखने में आती हैं कि, और ये सूरत को पढ़ के लगता है कि बहुत ही मतलब ज्यादा जरूरी है कि हम लोग अगर पर्दा करेंगे और इन चीजों से। और फिर ये है कि देख एक चीज ये कि कितना मतलब दूसरों को देख के कि उनके पास माल है दौलत है, लेकिन किस्मत का कुछ पता नहीं होता। फिर क्या हुआ कि वो हस्बैंड की उनके जॉब भी छूट गई, अब उनकी किस्मत देखें, वो तो अल्लाह ताला है किस्मत बनाने वाला ना, कि अच्छी जॉब देखी और पैसा देखा सब कुछ देखा, लेकिन आप ये देखें कि आप अपनी किस्मत को नहीं बदल सकते। कि किस्मत तो अल्लाह ताला ने जो लिखा है वही मिलेगा, और मतलब ये कि वो खुद फिर सिलाई की और ऐसी, तो भी नहीं मुझे पता कि उनके क्या हालात हैं। तो इसलिए ये कि, और दूसरे ये कि सलाम का जो है पढ़ा हमने, तो हमें और इजाज़त लेने का, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि किसी के घर, ये कि यहाँ तो फ़ोन का है ज़्यादा, कि मतलब आप जाने से पहले फ़ोन करें और पूछें कि अगर उनके पास टाइम है तो जाएं, और एकदम से नहीं कि हम फ़ौरन फ़ोन करें और कि हम आ रहे हैं। बहुत से लोग तो यही करते हैं कि हम आ रहे हैं, फौरन फोन किया और ये भी नहीं पूछा कि टाइम है या नहीं है, तो फौरन ही पहुंच गए। ये इन चीजों को भी देखना बहुत जरूरी है। और एंड की आयत जो हमने पढ़ी कि उसमें कि पूरी सूरह नूर का निचोड़ है कि इंसान देखे, अपना जायजा ले कि कायनात के बारे में, कि मतलब कायनात में हर तरफ अल्लाह का नूर ही नूर है, और अल्लाह ताला ने इंसान को किस मकसद के लिए पैदा किया है और भेजा है, कि
सही, जजाकिल्ला।
अपने अमलों का जायजा लें कि हम लोगों के अमल जो हैं वो कैसे हैं, और कोशिश करें कि हम लोग अमल करें।
इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाती वल अर्द। तो आखिरी पैगाम जो ले जाते हैं कि हम अपने अमलों को बेहतर करें।